उदाहरण उपयुक्त है। गुरु सेवक भगवान कहलाता है और कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं। गुरु पूजक ईर्ष है और भगवान कृष्ण पूज्य ईर्ष है। गुरु और भगवान में वही अंतर है। दूसरी बात, जिस भगवद गीता में भगवान का उपदेश है वो बिना किसी हेर फेर के गुरु द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अतएव परम सत्य गुरु में विद्यमान रहते हैं। श्लोक 26 में ज्ञान ज्ञान दीप प्रदे कहा गया है। भगवान समुच्चय विश्व के लिए असली ज्ञान है और उनके प्रतिनिधि रूप में गुरु इस संदेश को सारे विश्व में ले जाता है। अतएव चरम पद पर गुरु तथा भगवान में कोई अंतर नहीं होता। यदि कोई भगवान कृष्ण या रामचंद्र को सामान्य व्यक्ति मानता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो भगवान सामान्य व्यक्ति बन गए हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु को यदि उसके परिवार के लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि यह सामान्य मनुष्य बन गया है। गुरु भगवान के तुल्य है। अतएव जो आध्यात्मिक प्रगति करने के इच्छुक हो उन्हें गुरु को इसी तरह मानना चाहिए। इस समझ में थोड़ा भी हेर फेर होने से शिष्य 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 के वैदिक अध्ययन तथा तप में वज्रपात हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथनितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिबिशाखानुतंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के जो प्रसंग है, युधिष्ठिर महाराज और उनको समझाने वाले समझा रहे हैं धर्म के विषय में नारद जी, तो बड़े ही गंभीर विषय है क्योंकि ये गृहस्थ की चर्चा है। तो इस अवसर पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श गृहस्थ है। आदर्श गृहस्थ मतलब इंद्रिय तृप्ति के घेर में रहते हुए भी जो इस तरफ से मोह मोड़ ले। क्योंकि जो क्योंकि गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ जीवन स्वीकार करना मतलब इंद्रिय तृप्ति करना। प्रभुपाद जी लिखे हैं भगवद गीता में, गृहस्थी करना मतलब इंद्रिय तृप्ति के विषय में उनकी इच्छा है। और ऐसे चंगुल में रहते हुए जो गृहस्थ इस तरफ मोह साइड कर लें तो आदर्श है। वो आदर्श के रूप में दिखाया जाता है। तो जब तक एक जीव को ये संसार का परे जड़ चेतन ये विषय में सही सही ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक अपने इंद्रियों को वो दमन नहीं कर सकता। सारे शास्त्र में यही है, कैसे इंद्रियों को दमित किया जाए, और दमित हाँ ये दमित इंद्रियों के द्वारा ये दमन करने के बाद ये इंद्रियों कैसे भगवान का सेवा में लगाया जाए। तो इसी विषय में जो भी चर्चा भी जो भी हो, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ये सारे उपदेश देने का पीछे ये मतलब रखते हैं कैसे वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें। यही हम पहले देखें कि ये गृहस्थ जीवन में ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि भक्ति को स्वीकार किया जाए, क्योंकि भक्ति ऐसे एक रास्ता है तो आंख बंद करके भी चलोगे भी तो उनका कुछ हानि नहीं है, गिर भी जाओ तो भक्ति करते कर, गिर भी कोई जाए तो वो कुछ भी हानि नहीं हुआ है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बताते हैं तुम भक्ति करो, और भक्ति का केंद्र कौन है? गुरु। भक्ति का शुरुआत गुरु से होती है। अका की हमारा नाई बल पाए हरि नाम, हरि नाम अकेले से नहीं होता है, जब तक एक तत्वदर्शी भगवान को समझने वाले जानने वाले गुरु के दर्शन नहीं होता है। क्योंकि एक भगवान के सच्चा भक्त सही भक्तों के भी दर्शन करना अनेक जन्म का पूंजी का तपस्या का फल है। भगवान के शुद्ध भक्तों को पाना, उनके शरण में शरण को स्वीकार करना, मतलब भगवान को पा जाना, भगवान का शरण में जाना। भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे में कोई तफात नहीं है, और जो तफात दिखता है वो मूढ़ है, मूर्ख है। तो इसीलिए यहाँ पर अनेक अनेक उपदेश देते हुए युधिष्ठिर महाराज को नारद जी अंतिम में आज कहते हैं ऐसा ये भगवान साक्षात, भगवान साक्षात कौन है ना? प्रधान। श्रील प्रभुपाद की, तो भगवान कौन है ना? साक्षात प्रधान है। भगवान कौन है ना? प्रधान। प्रधान शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी करते हैं कि प्रकृति के मुख्य कारण। ऐसा ही बात है। तो ये भौतिक जगत जो है त्रिगुणात्मिका है। हाँ, जो भी हम देख रहे हैं ये गुणों के प्रभाव से जोड़े हुए हैं। ये भौतिक जगत का बनावट तीनों गुणों के द्वारा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो भी आता है वो बन जाता है, ये गुणों के द्वारा वो उलझ जाता है, वो गुणों से मुक्त हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर भगवान प्रधान ना, प्रभुपाद जी प्रधान शब्द का कहते हैं प्रकृति का मुख्य कारण। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं जे च एव सात्विक भाव राजस तामस चे मत एव एति तान विधि न तू आंग तेसु ते मई। हे अर्जुन, भले ये गुण का शुरुआत मेरे से हुई है, मेरे से हुआ है, लेकिन ये गुणों में मेरा कुछ नहीं रहता है, कुछ कारबार नहीं रहता है। भले सत्व जे च एव सात्विक राजस तामस चे मत एव एति तान विधि, आप जानो ये सारे मेरे से, लेकिन न तू आंग तेसु, तेसु मतलब मैं उधर नहीं हूँ, मई ते वो मेरे है, मेरे में है, लेकिन मैं वहां पे नहीं, वो गुणों में नहीं हूँ। यही भगवान का विशेषत्व है। भगवान गुण भगवान से गुण ये सारे गुण आए हुए हैं, लेकिन भगवान ये गुणों में जाते नहीं है, लेकिन बद्ध जीवात्मा का ये दोष है, जब वो यहाँ पर आता है ये गुणों के भीतर आ जाता है। भले सनातन है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा होने के, भगवान को स्वतंत्र इच्छा जीवात्मा को देने के कारण ये गुणों के चंगुल में जाकर के अनादि कई शरीर को बदल रहा है। ये गुणों ही उनको पिटाई कर रहा है, ये गुणों के द्वारा वो कई प्रकार शरीर का परिवर्तन कर रहा है, अनादि समयों से यही हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं त्रिभी, भगवान श्री कृष्ण यही बात भी कहते हैं भगवद गीता में, त्रिभी गुणमयी भाव ये भी सर्वंग इदंग जगत। मैं भी कहा कि तीनों गुणों के द्वारा त्रिभी गुणमयी भाव ये भी सर्वंग इदंग जगत मोहितों न अभिजानाति माम एभ्य परम अवयम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं अर्जुन ये तीनों गुणों के द्वारा में ये जगत है, लेकिन ये तीनों तीनों गुणों के अंतराल चीज को मेरे जो एक एक कर्तृत्व है, मेरे जो एक प्रभुत्व है, मेरे जो एक अथॉरिटी है, मेरे जो एक नियंत्रण करने का जो शक्ति, ये शक्ति को ये मूढ़ देख नहीं पाता। मूढ़ मोहितंग की मोहित है, मोहितंग न अभिजानाति माम एभ्य परम, मेरे जो परम शक्ति है अवय है, मैं अवय हूँ, मैं चित्त नहीं होता हूँ। ये चीज को ये मोहितंग ये जीव नहीं जान पाता है। प्रकृति के गुणों के भीतर चार प्रकार, ये तीन गुणों जो है, तीन गुणों के भीतर संपृक्त मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। जो ब्राह्मण है ना, जो सत्व गुण के है उनको ब्राह्मण, जो रजोगुण के क्षत्रिय, और रज तम का मिश्रित गुण के भीतर रहने वाले व्यक्ति को वैश्य, और लो क्लास जो है उनको शूद्र कहा जाता है। और उससे नीचे हीन जो है उनको पशु कहा जाता है। तो ये तीनों गुणों के भीतर से जब हम नहीं उठेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते बाहर आओ, हाँ निकलो वहां से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम आओ इधर से हटो। हाँ जब तक हम गुणों के भीतर रहेंगे, एक गुणों के भीतर रहने के कारण हमें कर्ता कर्ता अहम इति मन्यते, क्योंकि गुणों के द्वारा जीव 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 निर्गुण है। भगवान निर्गुण है मतलब उनका अंश भी निर्गुण है, लेकिन ये कर्ता क्यों मानता है नहीं गुणों के भीतर कर्ता अहम क्यों गुण, इसीलिए उठाते हैं अर्जुन आओ यहाँ से निकलो चलो। तो जब तक एक जीव गुणों के भीतर रहेगा तो वो अपने को कर्ता मान बैठेगा, और जब तक कर्ता मान बैठेगा तो प्रकृति क्रिया भगवान का जो अंतरंग भगवान का शक्ति जो काम कर रही है वो शक्ति को दर्शन नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। ऐसे न समझने वाला व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मूढ़ ये मूर्ख है, वो जान नहीं पाता समझ नहीं पाता है। तो रजोगुण में, क्योंकि गुण शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं रज्जु। हाँ रज्जु का काम क्या है, चाहे वो रज्जु का काम है बांधना। हाँ चाहे वो सोने का, भले सत्वगुण का हो रज्जु हो ना क्यों, चाहे वो सोने का जंजीर हो ना क्यों। हाँ सोने का जंजीर हो लोहे का, जंजीर का काम है बांधना। हाँ तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोकों के भावार्थ में, तो कहते हैं कि रजोगुणी और तमोगुणी लोग भगवान को नहीं समझ पाते। रजोगुणी तमोगुणी तो छोड़िए, सत्वगुणी लोग भी भगवान का साकार रूप को स्वीकार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो भगवान को तीन स्टेज में समझा जाता है, तो ये जो पहली कदम है भगवान को और ध्यान देने का, तो ये उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जो सत्वगुण के खुराक थोड़ा पोषण जुगाता है भगवान को और मोह मोड़ने के लिए, तो ऐसे स्थिति में रहते हुए भी वो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार नहीं हो पाता है। ये अवस्था गुणों का इतने बड़े खतरनाक शत्रु है हमारा। तो आगे जाके कहते तो गुणों से कैसे हम निकलेंगे, तो भगवान सुलझाव देते हैं, समस्या समाधान करा बताते हुए देते कहते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्वया माम एव ज प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण को ले रखा है मेरा जो त्रिगुणमयी गुणमयी माया को दूर करना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन आसान कैसे है ना प्रपद्यन्ते। सारे शास्त्रों का एसेंस निचोड़ यही है कि आओ मेरे शरण में। भगवद्गीता का प्रसिद्ध श्लोक है शरणं व्रज मा सुच, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे शरण में आ जाओ। यही कहते हैं कि माम एवजे प्रपद्यन्ते, जो सब नहीं जो व्यक्ति मेरे प्रपद्यन्ते मतलब शरण लिया है, ये मेरा जो त्रिगुणात्मिक शक्ति है मेरे त्रिगुणमयी माया है वो अति सहज से लांग जाता है, पार हो जाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बताते हैं कि ये जो भगवान का जो शक्ति है उनको पार होना असंभव है। ये शक्ति का कंट्रोलर पुरुष कौन है ना, भगवान से भगवान कहते ना भगवान साक्षात प्रधान पुरुष। ये प्रकृति का पुरुष कौन है ना, भगवान श्री कृष्ण। और प्रभुपाद जी ये पुरुष का अर्थ कैसे करते हैं कि जो पुरुष है ये त्रिगुणात्मक शक्ति का कंट्रोलर है। ये ये भौतिक जगत का कंट्रोलर भगवान, ये सात्वत्व तंत्र में बताया गया है, विष्णुस्तु त्रीणी रूपाणि पुरुष ख्यानि अतः विदु एकंतु महत सृष्ट द्वितीयंतु अंड संस्थितम तृतीयं सर्वभ्रूस्तस्तम तानि ज्ञाता विमुच्यते। भगवान ये भौतिक जगत का मेंटेन करने परिचालना करने चलाने के लिए अपने स्वांश विस्तार किए तीन विष्णु के रूप में। महाविष्णु जो महत्त्व भौतिक जगत बनाए उनको महत्त्व कहा जाता है, और ये महाविष्णु बनाने के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक साई विष्णु प्रवेश किए। अरे गर्भोदक साई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किया, लेकिन ब्रह्मांड के भीतर जो वस्तुएं हैं उनको क्रियाशील करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए ये क्षीरोदक साई विष्णु प्रवेश किए। जब क्षीरोदक साई विष्णु प्रवेश किए तो सारे जगत चलायमन हुआ। जब फिर ध्वंस के समय आता है तो परब्रह्म में महत्त्व में सारे जीवराशि वहां पर जाके आश्रय लेते हैं। फिर जब भगवान को सृष्टि करना होता है तो वो दृष्टि निक्षेप करते हैं महत्त्व पे, फिर वो सर्जना सृष्टि सर्जना हो जाती है। तो इसी प्रकार बहुत सा जानते हैं कि ये तीन पुरुष अवतार कैसे सब करते हैं, बहुत सा बार सुने हैं। तो उसके बाद ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी कहे हैं नियंता कंट्रोलर। ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर, हाँ, और जिनके पास छह ऐश्वर्य है उनको ईश्वर कहा जाता है। ये संसार में हम देखते हैं किसी के पास धन है लेकिन पूरा धन नहीं है, किसी के पास शक्ति है लेकिन पूरा शक्ति नहीं है, लेकिन पूर्ण मात्रा में ये सारे चीज जो व्यक्ति के पास है वो ही ईश्वर हो सकता है। हाँ, ईश्वर शब्द का ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रकृति के स्वामी पुरुष और कंट्रोलर ईश्वर को कौन, ईश्वर के चरण कमल को कौन खोजते हैं ना, ये व्यास जैसे महर्षि साधु संत लोग ऐसे ईश्वर के चरण कमल को खोज करते हैं। कुलशेखर अड़वार मुकुंदमाला सूत्र में कहते हैं, न अहं त्वत् पदम न अहं बंदे तव चरण अरविंद, न सॉरी, न अहं बंदे तव, न अहं बंदे तव चरणय द्वंद्वम अद्वंद्व हेतु, न अहं बंदे तव चरणय द्वंद्वम अद्वंद्व। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपका चरण का खोज नहीं करता हूँ या शरण नहीं लेता हूँ अद्वंद, क्योंकि ये जगत जो है जड़ और चेतन का मिश्रण है, इसीलिए यहाँ पर ये जगत द्वैतमय जगत है, इसीलिए हर कोई हर किसी के ईर्ष्या करते हैं क्योंकि जड़ और चेतन के बना मिश्रण है। हाँ, लेकिन भगवान का जगत जो है एक रूप है, चेतनशील है, भगवान का जगत एक रूप चेतन है, लेकिन ये भौतिक जगत जो जड़ और चेतन का मिश्रण है ना, इसीलिए यहाँ पर कुलशेखर अड़वाल मुकुंदमाला सूत्र में भगवान को प्रार्थना करते हैं, न अंग नवं बंदे तब चरण या द्वंद्वम अद्वंद्व हेतु, अद्वंद्व ये द्वैतता से मुक्त होने के लिए आपका चरण को चरण में मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। कुंभीपाकम गुरुम अपि हरे, हे हरि। हाँ, और कुंभीपाक नरक, कुंभीपाकम गुरुम भयंकर कुंभीपाक नरक यंत्रणा से, न अपेनु तुम शब्द का अर्थ है बचने के लिए, ये कुंभीपाक नरक से मुझे बचाओ, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया हूं, तो किसी लिए तो किसी लिए ना, और कहते हैं रम्या रमा मृदु तनुलता नंदने नापि रंतुम, ना मेरा मन में ऐसा इच्छा है कि नंदन कानन के कोमल त्वचा वाली अप्सराओं के साथ में पर्श सुख पाऊं, ये पर्श सुख पाने के लिए भी मैं नहीं कह रहा हूं, क्या ना भवे भवे हृदय भवने भावयं भवंतुम, इतना ही कर दो मेरे लिए कि मैं जन्मे जन्मे आपके चरण कमल को मेरे हृदय कंदरों में धारण कर सकूं। ये बात कुलशेखर अड़वार मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं भगवान कृष्ण को, और क्या कहते हैं, ना न आस्था धर्मे, मेरे कोई धर्म मार्ग में प्रगति करूं, ये बात भी युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं, एक गृहस्थ को धर्म मार्ग में बढ़ने के लिए कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो न आस्था धर्म, मेरा आस्था धर्म में मेरे कोई आस्था नहीं है, ना वसु नीचे ना कुछ संग्रह करने की इच्छा है, न एव काम उपभोगे ना इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, ऐसे ये कह रहे हैं। यत भाव्यम तत भवतु, भगवान मेरे तकदीर में, मेरे तकदीर में, मेरे किस्मत में जो लिखा है, ये तो भाव्यम जो होने वाला है आप हाथ मत लगाओ, मुझे भोगने दो, ये तो भाव्यम तत् भवतु, मुझे भोगने दो, छोड़ दो, मुझे मुझे भोगना है। हाँ भगवान, हे भगवान, ये तो भाव्यम तत् भवतु भगवान, पूर्व कर्म अनुरूपम, मेरे पहले के जो कर्म है ये कर्म के अनुसार मुझे जो भोग चीज भोगना है मुझे भोगने के लिए छोड़ दो। एतत् प्रार्थ्यं मम, इतना ही मैं प्रार्थना करता हूं। बहुमतम जन्मे जन्मे अंतरे अपि, हे प्रभु जन्मे जन्मे मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं, त्वत पाद आभरो योगगता, त्वत पाद आभरो योगगता निश्चला भक्ति अस्तु, इतना ही मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे साधु जो भक्तों की इच्छा एक ही यही रहता है, भगवान के चरण में आश्रय लेना, भगवान के चरण को ही चाहते हैं, भागवतम भागवत भी यही कहता है, जो भक्त मेरे चरण में आश्रय लिया है वो माया उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, माया उसको कुछ कर नहीं सकता, यही 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 चतुर्पण कर रहे हैं ये मुकुंदम, ये कुलशेखर अड़ुआ, त्वत पाद आवरोह योगगता निश्चला भक्ति अस्तु, अटल अटूट भक्ति आपके चरण कमल में मेरा हो, त्वत पाद आवरोह, इसीलिए मैं आपके चरण चरण कमल में शरण ले रहा हूं कि आप मुझे आपका चरण कमल में निश्चला दृढ़ एकांती भक्ति प्रदान कर दीजिए। ये बात को कहते सारद अरबिंद अभिधीरित। क्यों ना आपके चरण में ऐसा क्या चीज है, आपका चरण में मैं क्यों शरण लूं ना। सारद अरविंद अभिधीरित, शरद काल में आप देखे होंगे कमल का फूल जो है ना, उनका जो आकर्षण है सौंदर्य जो बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय उसका थोड़े छोटे छोटे बूंद उस कमल के पंखुड़ियों में लगी रहती है, और उस समय सूर्य का जो छिटकता हुआ रोशनी है वो सूर्य का ना कमल का सौंदर्य को और द्विगुणित कर देता है। क्योंकि भक्त जो होता है एक कवि भी है, भक्त जो है ना एक कवि भी है। यहाँ पर कुलशेखर वड़ुआर भगवान को स्तुति करते हुए अपनी काव्यात्मक ढंग से शैली को प्रकट कर रहे हैं। हाँ तो आपका चरणा चरण अरब आपका चरण कमल कैसे हैं ना, शारद अरबिंद, हाँ शरद काल के कमल फूल, खिलता हुआ कमल फूल जैसे, हाँ उसके पर सूर्य का उदयकालीन सूर्य का लालिमा का छिटा जो पड़ती है, और कमल पंखुड़ियों में जो उषा उसका बूंद बूंद लगी रहती है वो हीरे के जैसे प्रतीयमान होती है। ऐसे हाँ ऐसे चरण कम ऐसे आपके चरण ऐसे सौंदर्यवान कमल भी आपका चरण कमल को समकक्ष, आपका चरण कमल के समकक्ष नहीं हो पाता। हाँ तो मरणे अपि चरणों ते मरणे अपि चिंता चिंतो यामी। हाँ मुझे इतना ही कृपा करो कि ऐसे चरण मृत्यु के समय आपका ऐसे चरण कमल को मैं चिंतो यामी चिंतन कर सकूं। कि मृत्यु के समय अवस्था ऐसे होती है तब भगवान का चरण को क्यों, यदि जीवन तमाम यदि सही बड़े दृढ़ता नहीं होती है भगवान के चरण में, तो शरीर की अवस्था इतने नेगेटिव इतने ऐसा होता है कि चरण कमल को स्मरण करना असंभव है। तो नागपत्नियां भी कहती है, हाँ हे प्रभु, जब कूद रहे थे भगवान श्री कृष्ण कालिया के फणे के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो नागपत्नी अभी प्रार्थना करती है, हे प्रभु ये अघं पापम, ये घोर पाप का फल स्वरूप ये सर्प शरीर कालिया ले रखा है, और ये तमगुण में स्वभाव तो ईर्ष्यालु है और तमगुणी है, सर्प स्वभाव तो ईर्ष्यालु और तमगुण में होते हैं, तो ऐसे अवस्था में कालिया रहते हुए भी हमें आश्चर्य लगती है कि कैसे आपका चरण कमल को प्राप्त किया, जो चरण कमल को जन्म जन्मांतर से साधु मुनि ऋषि तपस्वी जोगी सिद्ध सिद्धि लोग भी सिद्ध लोग भी आपका चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये कैसे संभव हुआ। हाँ जो ये देखो ये कालिया कालिया का भाग्य को तो देखो, जो भाग्य को लोड़ती है लक्ष्मी जी, आज भी वृंदावन में बिल्लोवन के बिल्लोवन में वृंदावन के बिल्लोवन में लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। हाँ ये चरण कमल भी इतने करीब रहने वाली लक्ष्मी भी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे चरण कमल आसानी से आप उनको दे दिए, और आपका चरण कमल को देने के लिए ये विषाक्त जल का आपने खुद पड़े लंप प्रदान किए, तो खुद स्वतः आके अपने से आकर के आपका चरण कमल को बलात दे रहे हो, और आपका चरण कमल को पाने के लिए कितने तपस्या उठा रहे हैं उनको नहीं दे रहे हो, लेकिन स्वतः आके दे रहे हो, क्या बात है, क्या रहस्य है। हाँ लगता है अनेक जन्म का तपस्या ये कालिया ने किया, भले इसी जन्म में ऐसे अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका ऐसे कृपा के कारण से समझा जाता है कि उनका पहले का कई तपस्या है। हाँ और जब कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में माना, तब भगवान को दर्शन करने का विधि यही है, भगवान भगवान के चरण कमल से दर्शन किया जाए। हाँ और जो भक्त भगवान के चरण कमल में दर्शन कर आश्रय लेते हैं, वो भक्तों के लिए ये भवसागर उतना ही हो जाता है एक बछड़ा के खुर में जितना पानी रुकती है। हाँ क्योंकि कोई भी कितने दक्ष तैरने वाला हो ना क्यों, अपने प्रयास के द्वारा वो समुद्र को पार नहीं कर दरिया को पार नहीं कर सकता, लेकिन एक नाव मिल जाए एक नौका मिल जाए, ऐसे नौका ये भगवान का चरण कमल है। हाँ ये भौतिक संसार को सागर के साथ तुलना किया गया है, लेकिन ये सागर को कैसे पार करें, तो नौका है भगवान के चरण कमल। यदि ये नौका को कोई आश्रय भगवान के चरण कमल को आश्रय करता है तो वो आसानी से वो पार हो जाता है। ऐसे भागवत में एक श्लोक है, श्लोक मेरा याद नहीं है, लेकिन ऐसे उस श्लोकों के द्वारा बताया जाता है। तब भगवान का ध्यान को आकर्षण आकर्षित करने का उपाय है भगवान के चरण में शरण लेना। हाँ, महाभारत में कथा है, जब महाभारत युद्ध होने के पहले और अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया, दोनों गए, और वो समय भगवान श्री कृष्ण सोए थे, और अर्जुन गया कहाँ पे, खड़ा रहा भगवान के चरण के पास, और दुर्योधन कहाँ गया, खड़ा रहा भगवान के सर के पास। जब भगवान श्री कृष्ण उठे, हाँ, तो पहले ध्यान उनका अर्जुन के ऊपर गया। तो क्यों, अर्जुन चरण में खड़ा था। तो यहां पर सीख होती है, जो व्यक्ति भगवान का चरण को ध्यान करता है तो भगवान का ध्यान पहले वो व्यक्ति के ऊपर जाता है, सर के ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति का नहीं। हाँ, गोपियां भी जैसे सर के ऊपर चढ़ने लगे तो भगवान अदृश्य हो गए। तो हमें भगवान के सर के ऊपर चढ़ना नहीं, चाहे हमें कितने भक्ति में एक्सपर्ट हो जाए ना, कि भक्ति में आगे बढ़े ना क्यों, हमें भगवान के चरण कमल में ही पड़े रहना चाहिए। जितने हम छोटे बन के संसार में रहेंगे, उतना जल्दी साधुओं के, गुरुओं के, वैष्णव के, भगवान कृष्ण के ध्यान हमारे ऊपर हो सकता है। तो यही बात अर्जुन भी अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। रामायण में भी एक कथा है, जब अहल्या को गौतम जी के अभिशाप मिल गया, पत्थर बन गई, और भगवान कृष्ण ऋषियों के साथ चल रहे थे, तो देखें चलते चलते तो देखें कि ये बगल में एक पत्थर को, तो लेकिन ये पत्थर में एक विशेषत्व तो देखें भगवान श्री राम, और पूछ दिए ऋषियों को ये क्या है। तो राघवेंद्र महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे भागवत कथा में, तो रामचरित मानस का श्लोक को गा रहे थे, तो ऐसे तो ऋषियों लोग कहें कि ये गौतम का नारी है, आपका चरण कमल को अपेक्षा करके पत्थर बन के पड़ी है, हाँ कृपा करके आपका चरण कमल का स्पर्श दीजिए तो अपने स्वरूप में आए। तो जैसे सुने भगवान श्री राम अपने चरण कमल को, हाँ ये पत्थर के ऊपर जैसे ही रखे, अहल्या ने अपने स्वरूप में आए। हाँ, तो उसी प्रकार हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत, गोविंद जब आए भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवा करने के लिए, तो वो लांगे भगवान को लांगे। हाँ, भगवान को शास्त्र में गुरु शास्त्र का निर्देश यह है कि भगवान या गुरु को लांगा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गोविंद जब आया भगवान की सेवा के लिए, तो वो चैतन्य महाप्रभु को लांग गया, क्योंकि वो समय चैतन्य महाप्रभु सोए थे और उनको सेवा करना था चैतन्य महाप्रभु का, और चैतन्य महाप्रभु को जब खुद लांग करके चले गए और सेवा किए, और सेवा करके जब जाने समय हुआ तो वहीं पर वो अटक गए और हो नहीं पाया, उन्हें उनसे हुआ नहीं कि मैं फिर लांग करके जैसे जाऊं। सुबह हो गया और चैतन्य महाप्रभु देखें, अरे तुम सुबह हो गया था, चैतन्य महाप्रभु पूछे अरे तुम आए थे सेवा करने के लिए, अभी तक तो सुबह हो गया, अभी तक तो खड़े हो, तो आप गए क्यों नहीं। तो जवाब में गोविंद बोला कि देखो जब मैं आया था वो समय आपका सेवा करने के मेरा उद्देश्य था, और जब जाना हुआ तो मैं आपको और लांग नहीं पाया। हाँ, तो यही है। तो यहाँ पर भी हमें सीखना होता है कि भगवान का चरण कमल को प्राप्त करने के लिए कोई भी भौतिक अवरोध हमारे सामने आए ना क्यों, वो भौतिक अवरोध कितने भी तकलीफदायक होना क्यों, कितने कष्टमय होना क्यों, उनको लांगने के लिए के भक्त सतत तैयार रहता है। लेकिन अपने लिए जब आता है, अपने लिए जब बारी आता है, तो वो असमर्थ रहता है। हाँ, तो यही बात यहीं पर कहा जाता है। तो यही बात भी भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरणागति प्रार्थना में कहते हैं, भजो हुरे मेनो मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदर। हाँ, ये बात भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु बाल लीला कर रहे थे जगन्नाथ मिश्र के घर पर, एक बार जगन्नाथ मिश्र बोले निमाई जाओ दूसरे घर में कमरे में मेरा किताब है उसको लेकर के आओ, और निमाई छोटे छोटे चरण कमल को रखते हुए गए और ये किताब को ला करके पिताजी को दिए, जगन्नाथ मिश्र को दिए, और दे करके निकल गए। और जब जगन्नाथ मिश्र किताब अध्ययन करने के बाद किताब को रखने के लिए दूसरे कमरे में गए, तो देखे सारा घर में भगवान कृष्ण के चरण कमल सब जमीन पे ऊपर पड़ा है। हाँ, तो तुरंत सची माता को बुलाए, देखो 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 ये सब क्या है, ये तो, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र कम के व्यक्ति नहीं थे, वैष्णव थे, वो पहचान कर लिए, सिम्टम उनके जो लक्षण था वो लक्षण से पता चल गया कि ये भगवान कृष्ण के चरण कमल है। और सची माता को आवाज दिए, देखो देखो हमारा तो निस्तार हो गया, हमारा तो उधार हो गया। तो ये उधार करना, निस्तार करना भक्तों की एक ही मात्र उपाय है, भगवान के चरण कमल। हाँ, लेकिन ये भगवान को चरण कमल को कैसे प्राप्त किया जाए, एक तत्वदर्शी गुरु के द्वारा, नहीं तो संभव नहीं है, कभी नहीं होगा, जन्म जन्म भटकते रहेंगे। लेकिन जब तक हमें एक तत्वदर्शी गुरु के संधान में संधान नहीं करते हैं, उनके शरण को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक भगवान को समझना, हाँ ब्रह्मा इंद्र भी हाँ बिगड़ जाते हैं, वो भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे प्रभु जब ये संसार को आते हैं हाँ अपने स्वरूप स्वरूप में, तो ये अभजानंती मांग मुढ़ा, हाँ अभजानंती मांग मुढ़ा, वो जान नहीं पाता, समझने मूढ़ व्यक्ति, हाँ मानुषिम तनुम आश्रित। प्रभुपाद जी कहते हैं आज के श्लोक, ना ना युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं कि न मन्यते लोक जन, सामान्य जन उसको मनुष्य मानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार को आते हैं तो मानुषिम तनुम आश्रित, मनुष्य शरीर को आश्रय करते हुए जब भगवान ये धरातल पर आते हैं तो सामान्य जन उनको हंसते हैं, उपहास करते हैं, उनके जैसे समझते हैं। हाँ, जैसे कि असुर स्वभाव वाले शिशुपाल ग्वाला समझ रखा। हाँ, और जब भगवान श्री कृष्ण जब रंग संभा में प्रवेश किए तो वहां पर जितने सारे लोग उपस्थित थे तो अपने अपने चेतना के अनुसार वो कृष्ण को देखने लगे। हाँ, कोई ऐसे देखा ऐसे ऐसे देखने लगे। हाँ, वास्तविक कृष्ण को समझना है तो गुरु के शरण में जाना है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं मेरे ऐसे तत्वदर्शी गुरु और मेरे में कोई अंतर नहीं है। पहले कल भी कुमदास प्रभु बता रहे थे, गुरु ही भक्ति का शुरुआत है, पहली कदम है, गुरु के शरण में जाना पहली कदम शुरुआत है। हाँ, तो यही बात यहीं पर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कबूल करते हैं कि तत्वदर्शी गुरु और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। और ये बात भी आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे भक्त जना पार्थ, आगे क्या है, न मे भक्त जना पार्थ, न मे भक्त जना पार्थ भक्ताश्च, एक मिनट, क्योंकि ये श्लोक इतना बार में अभ्यास किया फिर भी हुआ नहीं, तो मैं लिख के लेके आ रहा था। जो भी है तो ढूंढना, तो यहाँ पर आदि पुराण में ये बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हाँ मेरे से मेरे भक्त बड़े हैं, मेरे पूजा की अपेक्षा मेरे भक्त का पूजा श्रेष्ठ है। हाँ, तो ये बात को चैतन्य महाप्रभु भी रामानंद राय को समझाते हुए कहते हैं, हाँ प्रभु कहे तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान, तुमाते जो प्रीति करे सही भाग्यवान। हाँ, तो क्योंकि ऐसे तुमाते जो प्रीति करे सही भाग्यवान, आपके आप में जो प्रीति हो गया जो व्यक्ति का वो भाग्यवान व्यक्ति है। प्रभु कहे तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान, तुमाते जे प्रीति तुमा के जे प्रीति करे सही भाग्यवान, तुमा के राजा रे हैला ना। और प्रताप रुद्रदेव का हाँ जेहेतु आपके प्रति प्रीति है प्रेम है तो यही गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार, उसका पहला लाइन क्या है, तो आपके प्रति प्रेम होने के कारण यही गुणे तुमा ये प्रीति नहीं तो यही गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बताते हैं कि आपके प्रति प्रीति होने के कारण, क्योंकि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है, तो जेहेतु रामा है रामानंद राय, हाँ जेहेतु आपके प्रति प्रीति है प्रताप रुद्र देव का, तो कोई हाँ व्यस्त होने की बात नहीं, यही गुण है कृष्ण तारे, ये गुण के वजह से कृष्ण करीबे अंगीकार, उनको कृष्ण अंगीकार करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कई बार बताए थे रामानंद राय को, तुम छोड़ो ये जो प्रताप रुद्र के पास ये गवर्नर पोस्ट में काम कर रहे हो, तो वो सरकारी नौकरी को त्याग कर मेरे पास आके रहा करो। और ये बात जब रामानंद राय चैतन्य प्रताप रुद्र देव को बताया तो तुरंत बड़े आनंद में हो गए, प्रताप रुद्र देव बड़े आनंद में हो गए और बड़े खुश हो करके आलिंगन किए रामानंद राय को। हाँ, आप क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु के ये राजनीतिक व्यापार से मुक्त होकर के चैतन्य के चरण कमल की सेवा में जा रहे हो, तो ये चैतन्य के सेवक के सेवक के ना चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की सेवा में जाने वाला व्यक्ति हाँ वो मेरे पूज्य है। हाँ, और ये भाव जब को प्रकाश किए रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु कहें कि आप उनके पर कृपा कर दीजिए, हाँ तो उसके जवाब में चैतन्य महाप्रभु कहें तुमा के एते प्रीति हैला राजा र यही गुणे कृष्ण तार करीबे अंगीकार। हाँ, ये लाइन आया, तुमा के एतो प्रीति हैला राजा र तुमा के ते प्रीति हैला राजा रे, यही गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। तो प्रीति आपके प्रति होने के कारण कृष्ण अवश्य उसको अंगीकार करेंगे। ये बाद में बात भी वेदों में बताया गया, जस्य देवे पराभक्ति जथा गुरु, जस्य देवे पराभक्ति जथा गुरु तथा तस्य ते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। जो ये संसार में जो व्यक्ति का गुरु और कृष्ण में प्रीति है और टूट श्रद्धा है, तो सारे शास्त्रों का एसेंस, सारे सारे वैदिक ज्ञान स्वतः उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और भगवान भी कहते हैं कि पद्म पुराण में, उत्तर पद्म पुराण में शिव जी भी पूछते हैं ना, शिव जी को पूछते हैं पार्वती, दुर्गा देवी पूछते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है, तो उसको जवाब देते हुए शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशं विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयनां समर्चनम। हे देवी, वैदिक साहित्य में, वेदों में भले देवताओं के पूजा का संस्तुति की गई है, यद्यपि वेदों में देव पूजा का संस्तुति की गई है कि, लेकिन उससे भगवान विष्णु के पूजा सर्वोपरि है, उससे उससे सर्वश्रेष्ठ पूजा है उन वैष्णव का जो लोग भगवान के साथ जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान अपने भक्तों को श्रेष्ठ कहते हुए अपने भक्तों के शरण में जाने के लिए यहाँ पर कहते हैं। और यही बात जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बताया, तो प्रताप रुद्रदेव कह रहे भटक ना भट्ट प्रताप रुद्र कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्हें तार कृष्ण कहे ताते सत्यमानी। हे सार्वभौम, हे भट्टाचार्य, आपने कह दिया ना चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भट्ट कहे ना भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्ही तारे कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। आपने कह दिया ना चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, फिर उनके शरण में जाना मेरा कर्तव्य है। और यही बात चैतन्य महाप्रभु दाक्षिणात्य से वापस आए जगन्नाथपुरी, और सार्वभौम भट्टाचार्य के पास सारे नीलाचल के वासी जाते हैं और स्तुति करते हैं, प्रभु सहित तो आमार सभा कराओ मिलन तुम्हार प्रसादे पाए प्रभुर चरण। क्योंकि संतों के कृपा से, साधु के कृपा से, यही बात वृंदावन में एक हमारे भक्त पूछ दिए गुरु महाराज जी को कि भगवान का भक्ति कृपा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बड़े ही उस समय वो भक्त डिस्टर्ब था, तो पूछा ही जो लेने से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि कैसे भगवान का कृपा प्राप्त किया जा सकता है। तो बताए उन्होंने कि भक्तों के माध्यम से ही भगवान का कृपा प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान का कृपा को प्राप्त करने के लिए शिवानंद सेन का कुत्ता जैसे बनना पड़ेगा, ऐसे बात है ना। तुम मेरे कुत्ता का प्यार करते हो ना, क्या है, मुझे प्यार करना है तो मेरे कुत्ता का पहले मेरे कुत्ता को प्यार करो। तो शिवानंद सेन जाने के पहले, भगवत धाम जाने के पहले चैतन्य महाप्रभु उनका कुत्ता को पहले भेज दिया। तो उसी प्रकार जब तक हमें शुद्ध भक्त के कुत्ता नहीं बनते, तब तक हमें भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। तो यही बातें को ये युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बताते हैं, किस प्रकार भगवान का प्रकृति को समझते हुए, भगवान जो एकमात्र कंट्रोलर है और भगवान पुरुष है, और बाकी सारे जितने सारे हैं ये प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, जीव जो है प्रकृति है, और एकमात्र पुरुष भगवान है, तो उनका शरण में कैसे जाया जाए, उनके चरण कमल को कैसे प्राप्त किया जाए, न कि तत्वदर्शी गुरु के द्वारा। तो ये तत्वदर्शी गुरु के संधान में हमें जब तक नहीं जाते हैं, शरण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है, इसी ये भौतिक संसार में हमें अटक जाते हैं। तो पिछले कई श्लोकों से गुरु को माध्यम बनाए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो ये उपदेश से युधिष्ठिर महाराज ना नारद जी का उपदेश से यही बात सीखना है, तो भक्ति को प्राप्त करना है, भगवत धाम प्रवेश कर भगवत धाम में प्रवेश करना है, तो उनके भगवत धाम के नित्य सेवकों के द्वारा उनके शरणागति लेंगे तो निश्चित रूप से हमें हाँ जा पाएंगे। यही बात जो अमेरिका प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जो अमेरिकन युवक लोग पूछे कि हमें तो इतने बुरे कर्म किए हैं तो लगता नहीं है हमें भगवत धाम जाएंगे, तो प्रभुपाद जी क्या कहें, तुम मुझे मालूम है तुम इतने म्लेच्छ हो, इतने घृण्य कर्म किए हो, तुम लोग योग्य नहीं हो भगवत धाम में प्रवेश कर जाने के लिए, लेकिन एक काम करना, तुम्हें आप लोग मेरे धोती का पिछला हिस्सा को पकड़ लेना, हाँ तो बैकुंठ का मेन गेट में नहीं हो तो पिछला वाला गेट में मैं आप लोग को घुसा के लेके चला जाऊंगा। तो यही बात हमें यही करना है, हमें यही करेंगे हाँ तो भगवत धाम डेरी नहीं है। हाँ लेकिन हमारा मति विचलित तो हो जाता है, ऐसे परंपरा ऐसे गुरुओं को समझने के लिए हमें अक्षम हो जाते हैं। हाँ तो हम समझ पाएंगे तो भगवान को भी आसानी से समझ पाएंगे, गुरु को समझेंगे तो भगवान को भी आसानी से समझ पाएंगे। यही बात युधिष्ठिर महाराज को नारद जी समझा रहे हैं, जाओ भक्ति करना है तो एक गुरु के शरण में जाओ, तो उनको कह रहे हैं मतलब ये बद्ध जीव को गुरु के शरण में भेजते हैं नारद जी, कि नारद जी भक्ति का आचार्य है, भक्ति में दक्ष है, प्रवीण है, तो यही बात हमको शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।